उसमें सारा दिन हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहे। चलिए शुरू करते। प्लीज अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। चलिए दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे और चेस्ट के ऊपर हल्का सा प्रेस करेंगे और आंखें बंद रखेंगे। एक मिनट के लिए जिनको भी आप जीवन में मानते हैं, परमपिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, सुप्रीम एनर्जी, जिनके ऊपर भी आपका विश्वास है, उनको एक मिनट के लिए सिर्फ याद कीजिए। दोनों हाथों को हल्का सा रब करें, आंखों पर स्पर्श दें, छोड़ दें। बहुत ही सिंपल सा अभ्यास हमने किया है मेडिटेशन का। जब हम अपने अपर आर्म से चेस्ट को प्रेस करते हैं तो हमारी जो मनोवाह नाड़ी होती है उसकी गति ऊर्ध्व होती है, मीन्स कि अपवर्ड होते हैं हमारे सिक्रेशंस, और सिक्रेशंस जब अपवर्ड्स होते हैं तो हमारे जो मन की चंचलता है वो स्लो होती है, एकाग्र होता है मन। और योग में सबसे ज्यादा इफेक्ट, जितना आपकी एकाग्रता बढ़ती है उतना ही आपके शरीर पे भी और मन पे भी, और जो भी आपको जीवन में प्राप्त करना है उसके लिए एकाग्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतनी इंपॉर्टेंट भी है ये क्रिया, सिंपल थी जो हमने किया था अभ्यास, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसी अभ्यास में महात्मा बुद्ध ने लगभग 5 से 6 वर्ष इसी पोजीशन में अभ्यास किया था मन को एकाग्र करने के लिए। चलिए अभी हम ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए ब्रीदिंग करेंगे। सिर्फ सिंपल है, सांस लेना है और छोड़ना है। सारा दिन हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन यहां क्या करेंगे, जब सांस आप भरेंगे फोर्सफुली, ज्यादा से ज्यादा आपने सांस अंदर भरना है, और जब सांस को बाहर फेंकेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपने एक्सहेल करना है पूरी फोर्स के साथ। मींस कि सांस जब भरे तो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का पंप, मींस चेस्ट हमारा 4 से 5 सेंटीमीटर, लंग्स पूरी तरह से फूले, और जब बाहर करे तो लंग्स के अंदर एक रिजाइडल वॉल्यूम होता है एयर का, वो भी वहां से बाहर हो ताकि एल्वियोल्स हमारे पूरी तरह से अच्छे से फैलें और सिकुड़े, हमारी वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी और जो सर्कुलेशन है उसके ऊपर इफेक्ट उसका आता है। सिंपल है, बिल्कुल सामने देखना है आपने। गर्दन हमारी सीधी है या हमारा स्पाइन सीधा है, उसके लिए सिंपल सा मेजरमेंट है 4.5 फिंगर। ये सिर्फ गर्दन सीधी रखने के लिए एक मेजरमेंट है, जैसे योगी लोग पहले अंगुलियों में उसको मापन करते थे। सामने देखना है सीधा, सांस गहरा लेना है और छोड़ना है। गहरा सांस भरा, पूरी फोर्स से सांस को बाहर किया, पूरा फोर्सफुली आपने सांस को बाहर करना है। लगभग 25 से 30 बार आपने गहरा सांस भरना है और गहराई से सांस को बाहर छोड़ना है। गहरा सांस भरेंगे, जब आप फास्ट कर रहे हैं तो सांस गहरा नहीं भर पाएंगे, इसलिए फास्ट नहीं करना है, गहराई से सांस भरना है। जितना धीरे सांस भरेंगे उतना अच्छे से लंग्स हमारे फैलते हैं, और जितना फोर्सफुली सांस को फेंकते हैं बाहर उतना लंग्स पूरी तरह से सिकुड़ते हैं। नहीं, रोकना नहीं है, पूरी तरह से भरा, गहराई से भरा, धीरे धीरे पूरा गहराई से भरा, फिर फोर्सफुली बाहर किया। सिंपल है, छोड़ दीजिए। दोबारा एक बार करते हैं। हमारा बायोलॉजिकली लंग्स के ऊपर इफेक्ट इस क्रिया का होता है, और योग शास्त्रों में जो कहा गया है विशुद्ध चक्र, जब आपकी फीलिंग आपके विशुद्ध चक्र तक होती है, वोकल कोड तक होती है, तो वहां वोकल कोड की क्लींजिंग, जो हमारा विशुद्ध चक्र है, वो भी अच्छे से क्लीन होता है। चलिए करते हैं अभ्यास। फीलिंग करेंगे यहां तक कि ब्रीदिंग का कंबाइंड हीट टच करता है आपके वोकल कोड तक। ठीक है, गहरा सांस भरा, पूरी फोर्स से सांस को बाहर किया, हाँ, और फील किया कि आपका सांस आपके वोकल कोड तक टच करता है। छोड़ दीजिए, रिलैक्स आराम से। श्वास जब हम भरते हैं लंग्स में ही जाता है, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर हमारी कंसंट्रेशन जाती है तो हमारी एनर्जी का फ्लो कंसंट्रेट होके उस पार्ट पे जाना शुरू होता है। सिंपली आप जैसे देखते हैं कि लेंस को कंसंट्रेट करते हैं तो उसकी पावर बढ़ती है, उसी तरह से जैसे जैसे हमारे मन की एकाग्रता एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर एकाग्र होती है, हमारी एनर्जी का फ्लो चेंज होता है और उस वजह से हमारा विशुद्ध चक्र एक्टिवेट होता है, क्लीन होता है। चलिए एक और क्रिया करेंगे, ब्रीदिंग की ही है, सिंपल। ऊपर देखेंगे, ब्रीदिंग को फील करेंगे। हमारे ब्रेन के तीन पार्ट हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला, जो सेंटर पार्ट है हमारा, वहां तक हमने ब्रीदिंग को महसूस करना है और योग शास्त्र में इसको बोलते हैं सहस्र चक्र की शुद्धि। देखिए ऊपर, चलिए गहरा श्वास भरा, फोर्स से श्वास को बाहर किया, पूरा फोर्सफुली आपने श्वास को बाहर किया, नहीं श्वास भरिए पूरा धीरे से, अब बाहर कीजिए, श्वास पूरा भरिए पहले, गहराई से श्वास को भरना है और छोड़ना है। नॉर्मली हमारा जो ब्रीदिंग है हमारे लंग्स को लगभग 40-50% इस तरह से खोलता है, फैलाता है और सिकोड़ता है, लेकिन यहां लगभग 80-90% तक हम अपने लंग्स को यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है। सिंपल क्रिया है, साइंटिफिक है, 40 डेज के बाद, 40-45 डेज के बाद वाइटल कैपेसिटी आपकी वेट स्पायरोमीटर के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, जो साइंटिफिक इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं लैब में उनके ऊपर आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को चेक भी कर सकते हैं। चलिए छोड़ दीजिए, रिलैक्स आराम से। अब एक और क्रिया हम करने जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, सीधा खड़े हुए सामने, श्वास को गहराई से भरेंगे, नोस्ट्रल्स को क्लोज करेंगे, श्वास को गहराई से इस तरह से भरेंगे, गालों को बाहर फुला के रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा, और जितना देर आसानी से आप रोक सकते हैं उतना देर इसको रोक के रखेंगे। श्वास मुख से भरना है, श्वास मुख से भरना है, श्वास नाक से निकालना है। श्वास हमने मुख से भरा है, इनहेलिंग थ्रू माउथ और एक्सहेलिंग थ्रू नोस्ट्रल, श्वास नाक से बाहर करना है। जब जितना देर ज्यादा से ज्यादा रोक सकते हैं उतना देर रोके रखें। हार्ट प्रॉब्लम अगर है तो आपकी कैपेसिटी का 50% ही यूज करें, ज्यादा नहीं। छोड़ दीजिए, रिलैक्स आराम से, आराम से, आराम से। हमने जब इनहेलिंग की है थ्रू माउथ उस क्रिया को बोलते हैं काकी मुद्रा। योगियों ने इस क्रिया को लिया है क्रो से, कौवा जब आकाश में उड़ता है और उसको लगता है कि उसकी एनर्जी कम हो रही है तो इसी तरह से एयर को सक करता है अपने अंदर, और एयर सक करने के बाद जो एनर्जी उसको गेन होती है फिर लंबे टाइम तक उड़ता रहता है और पक्षियों में सबसे ज्यादा स्वस्थ माना जाता है। बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट वो खाता है, बहुत सारी वेस्ट की चीजें खाता है, उसके बाद भी स्वस्थ सबसे ज्यादा कौवे को माना जाता है। और जब आप नाक से श्वास बाहर करते हैं तो आपके नोस्ट्रल्स पूरी तरह से क्लीन होते हैं। तो फिर एक बार इस क्रिया को करेंगे, श्वास भरेंगे गहराई से, गालों को ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ खींच के रखिए, पूरा अपने गालों को बाहर की तरफ फुला के रखा है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच कीजिए बाहर, श्वास नाक से बाहर करना है, श्वास नाक से बाहर करना है, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। बहुत ही साधारण सी क्रिया, जब अपने गालों को बाहर की तरफ फुलाया है अंदर से हमारा सेल्स और टिश्यूज माउथ के स्ट्रेच होते हैं, सलाइवा जो निकलता है हमारे माउथ से वो वहां से बढ़ता है और कभी कभी जब मसूड़ों से ब्लड आना शुरू होता है, जिनको रेगुलर इस क्रिया का अभ्यास करें, इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में लें, और रेयर केसेस में कभी जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं और थोड़ा सा फाउल स्मेल मुख से दुर्गंध आती है, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव ये क्रिया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हल्का सा नेक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, गर्दन को आगे और पीछे, सिंपल है बिल्कुल, आगे और पीछे। सर्वाइकल अगर है तो आगे आप ज्यादा नहीं झुकाएंगे, स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें, अच्छे से आपको स्ट्रेचिंग महसूस हो गर्दन के ऊपर। आंखें खुली रखें, आईज ओपन। नहीं, नॉर्मल है, ब्रीदिंग नॉर्मल है, हम मसल्स का मूवमेंट कर रहे हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल जैसे आपकी चलती है उस तरह से चलिए। छोड़ दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम क्या करेंगे, गर्दन को राइट साइड पहले स्ट्रेच करेंगे, सीधे खड़े रहेंगे, गर्दन को राइट साइड लेके जाएंगे, जैसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करें, ये साइड हमारा स्ट्रेच होना चाहिए पूरा। हाँ, गर्दन पे आप खिंचाव महसूस करें, धीरे से वापस आएं, कम बैक, चेंज पोजीशन, चेंज लेफ्ट साइड। कंधा ना उठाना है ना चेंज करना है, सिर्फ गर्दन पे मूवमेंट हमारे आना चाहिए। हाँ, वापस आएं, चेंज करें पोजीशन, चेंज पोजीशन, स्लोली चेंज द पोजीशन। हाँ, कंधा आपने उठा के ऐसे नहीं ले जाना है, आप यहीं खड़े रहिए, सिर्फ गर्दन को अपने मूवमेंट, यही ये चीज हमारी जो है ना, ये मूवमेंट पे आना चाहिए। स्ट्रेचिंग जब करते हैं तब हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट आता है, और जो थायरोक्सिन निकलता है वहां से सिक्रेशंस हमारे थायराइड ग्लैंड के निकलते हैं, वो आपके रेगुलेट होते हैं। तो जिन लोगों को भी थायराइड की दिक्कत है, वो रेगुलर अभ्यास करें गर्दन की इन क्रियाओं का, और जो भी टेबलेट्स आपको एडवाइस किया गया है वो कंटिन्यू रखें कुछ टाइम तक। जब आपको लगे कि योगा से आपकी चीजें ठीक हो रही हैं, तब आपने मेडिसिन को बंद करना है, एकदम से मेडिसिन बंद नहीं करनी है। चलिए रोटेशन, स्लो रोटेशन, 4 राउंड्स क्लॉकवाइज, स्लो रोटेशन, स्ट्रेचिंग इन एवरी डायरेक्शन। चारों तरफ आपको लगे कि आपका जो गर्दन है पूरी तरह से स्ट्रेचिंग हो रहा है, आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के ऊपर पूरा स्ट्रेचिंग पड़ रहा है, आंखें खुली रखेंगे, कंधे आपने नहीं हिलाने हैं। अपोजिट, एंटीक्लॉकवाइज, स्लो, थायराइड जितना आपका मेंटेन रहेगा, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स जितना मेंटेन रहेंगे उतना, कई बार आप देखते हैं कि डाइट बहुत कम लेते हैं उसके बाद भी वेट गेन होना शुरू होता है थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से, तो जितना थायरोक्सिन हमारा रेगुलेट रहेगा, जो सिक्रेशन हैं ग्लैंड्स के मेंटेन रहेंगे, तो हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कंट्रोल में आता है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन जितना स्ट्रेचिंग आप देते हैं उतना इफेक्टिव है। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। चलिए भी थोड़ा सा हम शोल्डर की एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। हमने यहां से शुरू किया, ऊपर से ब्रेन से शुरू किया, और धीरे धीरे हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। शोल्डर को सिर्फ मूवमेंट देना है हमने, अप एंड डाउन, श्वास भर के रखेंगे, जैसे हमने पहले श्वास भर के रखा था, गालों को फुला के रखा था, उसी पोजिशन में रहेंगे, सिर्फ हाथों को अपने मूव करना है जब तक श्वास रोक के रखेंगे। चलिए कंधा सीधा उठाना है, कोहनी आप बैंड नहीं करनी, उठाइए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करें, कोहनियां नहीं मोड़नी, ऐसे नहीं करना है, कोहनियां नहीं मोड़नी है। एल्बो स्ट्रेट, मूव अप डाउन, स्ट्रेच, रिलैक्स 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 आराम से चले भी। हम अपना शोल्डर को चेक करते हैं, हमारी फिटनेस कितनी है। राइट हैंड ऊपर से लेके आइए इस तरह से, और लेफ्ट हैंड पीछे से इस तरह से, और टच कीजिए पीछे। राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड नीचे से आप लेके आएंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ऊपर से लाइए, राइट को पीछे ले जाइए, राइट को नीचे से लाइए, लेफ्ट को ऊपर से लाइए, राइट को नीचे से, दोनों तरफ आराम से लग गए, दोनों तरफ आराम से आ रहे नहीं लग रहे, जो लग रहे तो अच्छी बात है, लग रहे हैं तो अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत होती है तो गैप ज्यादा होता है। अगर थोड़ा गैप है, समझिए 3 से 4 इंच का गैप है, थोड़ा सा ही गैप है, तो वो 10-15 दिन आप रेगुलर जो अभी एक्सरसाइज हम करेंगे वो करेंगे तो वापस आता है। फ्रोजन शोल्डर अगर होता है जहां पेन भी आपको कंधे में होना शुरू हुआ है, तब आपने उसके ऊपर ठंडा और गर्म सिकाई भी करना है, 2 मिनट ठंडा 2 मिनट गर्म। आइस पैक उस पर रख सकते हैं या पॉलिथीन के अंदर बर्फ डाल के आप अपने शोल्डर के ऊपर रख सकते हैं, और साथ के साथ गर्म 2 से 3 सेट आपने 2-2 मिनट के अगर किए तो लगभग 12 से 15 मिनट आपने सिकाई कंधों के ऊपर करनी है ताकि जो फ्रोजन शोल्डर है हमारा जल्दी से ठीक हो। चलिए भाई कंधे की दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। सिर्फ कंधे को मूव करना है, दोनों कंधों को कानों से सटाना है। स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, पाम फेसिंग आउटवर्ड, पाम फेसिंग आउटवर्ड, स्ट्रेच कीजिए पूरा वापस, फिर स्ट्रेच कीजिए वापस, फिर स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, पूरा स्ट्रेच करें। आपका लगे कि जो अपर आर्म है आपका कानों से टच होना चाहिए इस तरह, स्ट्रेचिंग मैक्सिमम। हमारा शोल्डर जॉइंट बाल एंड सॉकेट जॉइंट है तो मैक्सिमम डायरेक्शंस में मूव कर पाता है। चलिए पूरा बाहर ऐसे खुलेंगे ना तो रेडियस और अल्ना जो दोनों बोन्स हैं वो भी ऐसे स्लाइड करके पूरी तरह से स्ट्रेच होती। पाम फेसिंग आउट, हथेलियां बाहर की तरफ इस तरह से, यहां से बाहर से ऐसे, ये हाँ ये स्ट्रेचिंग। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। एक और एक्सरसाइज शोल्डर के लिए, हल्का सा दोनों हाथों को इधर लेके आइए ये पोजीशन, और यहां से आपने जर्क देना है सामने, हाँ सामने जर्क देना है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद रखे, टाइट रखे हाथ को, सामने जर्क दिया वापस, फिर जर्क दिया वापस, हाँ नहीं यहां से जर्क देना है आपने, फोर्स बाहर यूज करना है। दोनों तरफ फोर्स यूज कर रहे हैं, जब गए हैं वापस आए हैं तब भी। हमारे दोनों ही साइड के मसल्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही एक्टिवेट होते हैं। छोड़ दीजिए, रिलैक्स आराम से। अभी शोल्डर रोटेशन दोनों हाथ से करेंगे, आगे से पीछे पहले शुरू करेंगे, और श्वास भर के गालों को फुला के रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है हमें उस क्रिया का वो साथ साथ मिलता रहे। शुरू करेंगे, चलिए आगे से पीछे, आगे से पीछे, आगे से शुरू किया, पीछे लेके आए, ज्यादा से ज्यादा पीछे लेके, अंगूठा अंदर रखें, मुट्ठी बंद रखें, कोहनी सीधी रखें, कोहनी सीधी रखें, एकदम से स्ट्रेच करें पूरा, कोहनी सीधी, हाँ अरे कोहनी मोड़ रहे हैं अभी भी, कोहनी सीधी रखें, कोहनी एकदम से सीधा, छोड़ दीजिए। अपोजिट पीछे से आगे चलेंगे, सांस भर के रखेंगे, थोड़ा स्लो करेंगे तो स्ट्रेचिंग पूरा आएगा, स्लो करेंगे तो स्ट्रेचिंग ज्यादा होगा। छोड़ दीजिए, रिलैक्स आराम से, अभी थोड़ा स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, दोनों पैरों में हल्का सा डिस्टेंस लगभग 2 से 3 फीट, दोनों हाथों का सपोर्ट दीजिए पीछे, जो हमारा स्पाइन का लंबर और कॉक्सिक्स वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है, वहां अपने ऐसे सपोर्ट देना है, हाथ से आगे की तरफ सपोर्ट देना है और कमर से बेंड होना है पीछे, सांस भरते हुए पीछे चलेंगे। रोक के रखेंगे थोड़ा देर, रोक के रखिए थोड़ी देर, धीरे धीरे वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, सांस छोड़ते हुए वापस आना है, फिर आगे रिपीट करेंगे दो बार, सांस भरते हुए पीछे जाइए, होल्ड कीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। हमारे स्पाइन के अंदर दो आर्क होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, ये किस तरह से होता है, किस तरह से दो आर्क है हमारे स्पाइन के अंदर। रेगुलर जब आप ज्यादा देर किसी एक पोजीशन पे बैठते हैं तो वो आर्क के ऊपर लोड पड़ना शुरू होता है, उससे रिलेटेड जो लिगामेंट्स हैं और टेंडेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू होता है, स्ट्रेच होते हैं ज्यादा, और अगर उस पर आप शुरू में ध्यान नहीं देते, कमर के दर्द के ऊपर शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे स्पाइन के वर्टेब्राज हैं वहां प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, और उसके बाद तब भी आपने ध्यान नहीं दिया है तो हमारा जो कर्वेचर है, जो स्पाइन के दोनों आर्क हैं, उसमें चेंजेस आना शुरू होती है, और उसके बाद भी अगर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो पेन पूरा पैरों तक या हाथों तक, नंबनेस आना शुरू होती है। तो जितना स्पाइन हमारा हम फ्लेक्सीबल रखते हैं, जितना हमारे स्पाइन की मूवमेंट्स हम रेगुलर करते हैं, उतना हमारी फिटनेस अच्छी रहती है, क्योंकि जितना फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्पाइन की है उतना हमारा जो नर्वस सिस्टम है, एक है हमारा CNS, दूसरा है हमारा PNS, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो हमारे स्पाइन से जो गुजर रहा है, जो वेन्स हमारे स्पाइन से जा रही हैं, वो एक्टिव रहती हैं, और कहीं भी आपको बॉडी में नंबनेस फील नहीं होगी अगर स्पाइन की हमारी फिटनेस अच्छी है। चलिए अब धीरे से हम आगे झुकेंगे, लेकिन पैरों को डिस्टेंस देने के बाद तीन बार में, तीन काउंट में, 1, 2, 3, 1, 2, 3, हाँ, तीन काउंट में आगे जाना है। चलिए धीरे धीरे, जर्क नहीं देना है, आराम से जितना आप झुक पाते हैं, अगर आपको लगता है कि पेन हो रहा है या आप ज्यादा नहीं झुक पा रहे हैं तो वहीं होल्ड कर लीजिए, कोशिश करें ज्यादा जा पाए आगे। 1, 2, 3, हल्का सा प्रेशर देखें, नीचे की तरफ हमने झुकना है, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। कमर में अगर दर्द रहता है फिर भी आप फील करते हैं तो जो आपका पिलो है, जो गद्दा है, अगर ज्यादा पुराना हो गया है, समझिए 8-10 साल पुराना हो गया है, और उसका फोम की डेंसिटी बैठ गई है, नीचे से दब गई है, तो उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि जितना स्पाइन आपका रात में अगर हल्का सा भी एंगल चेंज होता है, वो गद्दा आपका ठीक नहीं है, समझिए 10-12 साल पुराना हो गया है, तो फोम हो या कोयर हो, वो कोयर भी बैठना शुरू हो जाता है और फोम भी दबना शुरू हो जाता है, तो एंगल हमारा स्पाइन का चेंज होता है, और रात को हम 4-5 घंटे या 6 घंटे जब भी बेड पे होते हैं तो उस दौरान हमारा एंगल अगर 1 सेंटीमीटर या मिलीमीटर में भी चेंज में आता है तो डिफॉर्मिटी आना शुरू होती है। इसलिए कोशिश करके जो हमारा पिलो है उसको अच्छा रखें, डेंसिटी हैवी ले, आजकल 70-60-80 डेंसिटी तक के जो पिलो हैं वो आते हैं, तो उनको यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर कमर में दर्द फिर भी आपको लग रहा है तो ठंडी और गर्म सिकाई आप कमर के ऊपर कर सकते हैं। चलिए दूसरा स्ट्रेचिंग करते हैं, अभी दोनों पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोल लीजिए, ज्यादा से ज्यादा खोल लीजिए, दोनों हाथों को साइड में खोलिए, अभी बहुत धीरे से हम चलेंगे आपका लेफ्ट साइड, आपका लेफ्ट साइड धीरे 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 लेफ्ट साइड, हाँ जी, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, वापस आइए, चेंज राइट साइड आपका
राइट,
पूरा स्ट्रेच कीजिए, आपका जो वेस्ट है ये वाला, ये पोर्शन आपका अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए, रिपीट कीजिए दो बार, छोड़ दीजिए, आराम से रिलैक्स। हमारा जो बेली का साइज है फिटनेस के लिए, भाइयों के लिए लगभग 36 के आसपास, जो हमारा बेल्ट का साइज है 36 के आसपास, और बहनों के लिए 32 और 34 के आसपास अगर रहता है तो हमारा जो फैट है यहां कम है, समझिए। फैट अगर बढ़ रहा है तो डाइट में आपने जो फैट वाली चीजें हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट है, एनिमल फैट्स है, वो आपने कम करना है। शुगर भी थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। 1 kg फैट अंडर बॉडी पे आपका आइडियल वेट से ज्यादा है तो समझिए 8,800 कैलोरीज हमने बॉडी में एक्स्ट्रा डिपॉजिट करके रखी है 1 kg। उस 8,800 कैलोरीज को हमने आइदर एक्सरसाइज, आइदर डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट और फैट को कट करके, या रेगुलर जॉगिंग करके, रनिंग करके, किसी भी तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं। साइंटिफिक सिस्टम से करें तो ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा भूखा रह के खाना छोड़ के उस तरह से रिड्यूस ना करें। डाइट अगर कंट्रोल भी करते हैं तब भी रेगुलर अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में आता है। अंदर से हमारे जो सेल्स और टिश्यूज हैं उनका मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा रहता है, जितना एक्टिव रहता है, उतना आपकी फिटनेस अच्छी रहती है। तो फैट अगर लग रहा है आपको बॉडी पे एक्स्ट्रा है तो डाइट में थोड़ा सा कट करें, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग थोड़ा सा फास्ट होनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, स्लो वॉकिंग से उतना फायदा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा तेज वॉकिंग करें, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। चलिए अभी जी, अभी हार्ट में भी आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, हार्ट की बात अभी शुरू करते हैं, हार्ट की बात शुरू करते हैं। अभी अभी मैंने फैट पे शुरू की है। चलिए अभी, हाँ जी 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 जी, अभी नेक्स्ट पॉइंट इसको टच करते हैं। चलिए अभी जंप करेंगे सांस भरते हुए। सांस भर के ऊपर जाएंगे, सांस भर के ऊपर जाने हैं, पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलने हैं, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। अब पूरा हाथों को खींचे ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर जा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। छोड़ दीजिए, रिलैक्स 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 आराम से। अभी एक डायगोनल मूवमेंट हम दे रहे हैं, हाथ की पोजीशन यहां पे रखिए और अपने घुटने को ऊपर टच करना है। डायगोनल है जो हमारा हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट है, जितना वो एक्टिव रहता है उतना आपकी फिटनेस अच्छी रहती है। और ज्यादातर जो फैट है हमारा, बहनों में पेल्विक कैविटी जो होती है वहां फैट जमना शुरू होता है, और भाइयों में भी जो वेस्ट वाली साइड है वहीं फैट थोड़ा सा जमना शुरू होता है, लेकिन रेगुलर जब ये मूवमेंट्स आप करते रहते हैं तो ठीक रहता है। डायगोनल मूवमेंट्स, डायगोनल राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, हाँ राइट, छोड़ दीजिए, फ्लेक्स 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 आराम से। अभी थोड़ा सा हम रनिंग करेंगे साइडवर्ड, हर बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे, पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे, पोजिशन इस तरह से रखिए, श्वास भरा छोड़ा, हाँ पंजों के ऊपर करें, पंजों के ऊपर करें, टोज के ऊपर, टोज के ऊपर करना है, पंजों के ऊपर, पंजों के ऊपर जब करते हैं तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हमारे स्टिमुलेट होते हैं और ब्रेन सेल्स तक हमारा एक्टिवेशन जाता है। हर बार सांस लेना और छोड़ना विद ब्रीदिंग आपको करना है, विद ब्रीदिंग करना है, छोड़ दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अभी आगे और पीछे मूवमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खोलें पैर को आगे और ज्यादा से ज्यादा पीछे लेके जाएं, हमारा हिप जॉइंट भी एक्टिवेट होता है, घुटने और टखने के लिए भी इफेक्टिव है क्रिया। हाँ टोज के ऊपर, पंजों के ऊपर करेंगे, पंजों के ऊपर, पंजों के ऊपर करें, ज्यादा फायदा है। छोड़ दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स आराम से। चले भी धीरे से, सिटिंग पोजीशन हाफ, हमारे थाइज और काफ के लिए बहुत इफेक्टिव है। हल्का सा वाइब्रेशन आप आपके काफ और थाइज में महसूस करेंगे अगर ठीक कर रहे हैं तो। सीधा बैठे, स्पाइन सीधा रखें, स्पाइन, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। थाइज और काफ के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। घुटना अगर रिप्लेस किया है किसी ने, नी रिप्लेसमेंट अगर किया है, तो आपको 110 से ज्यादा मूवमेंट घुटने की नहीं करनी है, 110 डिग्री तक ही घुटने को आपने बेंड करना है। जो भी उसमें हमारा जो घुटना आपका जब रिप्लेस किया है तो उनकी एक मूवमेंट की कैपेसिटी होती है, तो लगभग 110 या 120 डिग्री से ज्यादा आपको घुटने को नहीं मोड़ना है। चलिए अभी एक रनिंग करते हैं, सिंपल रनिंग करेंगे। हर बार सांस लेना और छोड़ना, हर बार पैर को पीछे हिट करना, पंजों के ऊपर करेंगे, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। चलिए हर बार पैर पीछे लगना चाहिए पूरा, बटक्स पे आपका एड़ी हिट होनी चाहिए हर बार, पंजों के ऊपर, पंजों के ऊपर, पंजों के ऊपर, टोज के ऊपर, टोज के ऊपर, टोज के ऊपर। हर बार सांस लेना और छोड़ना, हर बार पोजीशन चेंज करना है, हर बार पोजीशन भी आपको चेंज करना है। छोड़ दीजिए, रिलैक्स बैठ जाइए आपकी जगह पर, बैठ जाइए प्लीज। रनिंग, जॉगिंग और जंपिंग के दौरान हमारा जो बॉडी की इंटेंसिटी है उसके हिसाब से आपके कैलोरीज का बर्न आता है। थोड़ा सा जब फास्ट रनिंग करते हैं तो लगभग 4 से 6 कैलोरीज का बर्न हमारा रनिंग के दौरान आता है। हार्ट की अगर कोई दिक्कत है, कहीं ब्लॉकेज है, उसमें आपने रनिंग बहुत स्लो करनी है। जब भी आपको लगता है कि आपका सांस थोड़ा सा फूल रहा है तो तुरंत में एकदम से रिलैक्स हो जाइए, इस तरह से श्वास को मुख से बाहर करना है, इस तरह से। अगर लगता है कि श्वास आपका उखड़ रहा है, सिंपल आपको अपनी फिटनेस खुद टेस्ट करने के लिए अगर आप स्टेप्स चढ़ते हैं, समझिए 2-3 मंजिल तक आप आराम से चढ़ पाते हैं, तो आपकी फिटनेस समझिए अच्छी है। और एक सिंपल सा टेस्ट होता है ली कूपर्स 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट। 12 मिनट तक आपने रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है या वॉकिंग करनी है, जो भी आप करते हैं। डिस्टेंस आपने अपना चेक करना है, फर्स्ट डे आपने आपका डिस्टेंस नोट किया कि आपने कितना चल पाए हैं। आप समझिए कि आधा किलोमीटर चले हैं या 1 किलोमीटर आपने 12 मिनट में, 12 मिनट में कवर किया है। और पल्स रेट 120 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बीट उखड़ रही है उस रनिंग या जॉगिंग में तो आपको उसको स्लो डाउन करना है। अगर पल्स रेट 120 के अंदर में ही है तो आपके हार्ट में फिटनेस समझो कि अच्छी है। दूसरा, उसके 30-40 दिन बाद जब आप चेक करें उसी 12 मिनट में आपके डिस्टेंस में कितना इंप्रूवमेंट आती है और पल्स रेट आपका स्टेबल रहता है। आपकी हार्ट बीट उखड़नी नहीं चाहिए, डिस्टेंस आपका धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। एक अमेरिकन टेस्ट था जो ली कूपर ने किया था और साइंटिफिक टेस्ट माना जाता है फिटनेस के लिए। पहले क्योंकि इस तरह के टेस्ट चलते थे, आजकल आपकी ईसीजी है और बाकी सारे सिस्टम है, उनसे आपके हार्ट की फिटनेस का पता लग सकता है। दूसरा, अगर ब्लॉकेज आपको कहीं शो कर रहे हैं कि 70% है, 80% है या 90% है, तो तुरंत में हार्ट के लिए स्टेंटिंग होता है, स्टेंट डाला जाता है कि जो ब्लॉकेज है आपकी उसको एक वायर के थ्रू उस ब्लॉकेज को खोलते हैं और एक छल्ला होता है स्टील का, वायर का बना हुआ स्प्रिंग टाइप, उस स्प्रिंग टाइप के जो छल्ले को वहां हमारी नसों के अंदर सेट करते हैं ताकि हमारा जो फ्लो है ब्लड का वहां से इजीली निकलता रहे। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, स्टेंटिंग के बाद भी आपका फैट वहीं का वहीं है, कोलेस्ट्रॉल आपका वहीं का वहीं है। 4-6 महीने के बाद हो सकता है दोबारा नौबत आ जाती है, 2-3 साल के बाद दूसरा स्टेंट डालना पड़ जाता है। इसलिए जब भी आपको पता लगे कि ब्लॉकेज आ रही है, आपकी सांस उखड़ रही है, हार्ट की फिटनेस अच्छी नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज चालू करें, धीरे धीरे प्राणायाम कर सकते हैं। डाइट में एनिमल फैट आपने टोटली अवॉइड करना है, डेयरी फैट को भी अवॉइड करना है, नॉन वेज टोटली आपने अवॉइड करना है। वो सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा आपकी नसों में जमता है, उसको आपने अवॉइड करना है। जितना आप रनिंग जॉगिंग और जंपिंग करते हैं जो बॉडी हीट पे आती है, तो वो वहां से कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आपका रिवर्सल होता है। तुरंत में आपको कहीं लग रहा है कि 80% या 90% अगर बताया है और आप बच सकते हैं अगर, तो रेगुलर अपना एक्सरसाइज, मेडिटेशन और डाइट को कंट्रोल करके बच सकते हैं। हमारा डिपार्टमेंट है पूरा एक कैड का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जहां लाखों लोगों का रिवर्सल सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन से चेंज किया गया है। उनकी ब्लॉकेज लगभग 80% और 90% थी, जहां डॉक्टर्स ने बोला था कि शायद आपको स्टेंटिंग हो चुकी थी, बाईपास तक की उनकी तैयारी थी, लेकिन उनका भी रिवर्सल पॉसिबल हुआ है। डिपेंड करता है आपकी विल पावर कैसी। अगर हम डाइट पे कंट्रोल कर पाते हैं, फैट को रिड्यूस कर पाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर पाते हैं, रेगुलर थोड़ा एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर पाते हैं, तो ठीक है, रिवर्सल पॉसिबल है। और अगर आपको लगता है कि मैं इनमें से कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना स्मोकिंग छोड़ पाऊंगा, ना ड्रिंकिंग छोड़ पाऊंगा, ना नॉनवेज छोड़ पाऊंगा, तो जैसे ही आपको डॉक्टर एडवाइस करे तो तुरंत फिर स्टेंट करवाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेटर है कि अगर आप नेचर क्योर वाले सिस्टम पे जाएं, योगा थेरेपी पे जाएं, मेडिटेशन पे जाएं, तो ये सारी चीजों से रिवर्सल आपका पॉसिबल है। साइंटिफिक रिसर्चेज हैं जो अवेलेबल हैं और पूरी तरह से रिवर्सल आपका वापस आता है। इवन 90% भी ब्लॉकेज है तो वो भी 70-80 धीरे धीरे खुलते हुए वापस आती है। चलिए एक प्राणायाम करते हैं। सीधा बैठ के श्वास को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर प्रेस करना है, श्वास बाहर फेंकना है। पेट को अंदर प्रेस करें। जब पेट को अंदर प्रेस करते हैं तो हमारा लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, कोलोन है, हल्का सा वहां प्रेशर पड़ता है। और जब प्रेशर पड़ता है, जो टॉक्सिन्स वहां जमे हैं वहां से हटते हैं। इवन हमारा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज पे जब टॉक्सिन्स जम जाते हैं तो उसकी एक्टिवेशन कम होती है, और वो उसी वजह से जो शुगर है ब्लड की वो आपका अनबैलेंस होता है, शुगर आपकी बढ़ती है। पेट पूरा अंदर जाना चाहिए, पूरा अंदर जाना चाहिए जी। स्टेंट डालें तो कोई दिक्कत नहीं, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला स्टेंट एक टेम्परेरी रिलीफ है, फैट आपका वहीं का वहीं है, कोलेस्ट्रॉल वहीं का वहीं है, सिर्फ हमने वो जो प्रेशर वहां बना हुआ था उसको टेम्परेरी हमने स्प्रिंग डाल के हल्का सा ऊपर उठाया, पैसेज को आपका क्लियर किया है, टेम्परेरी रिलीफ आपको दिया है। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज पे रहेंगे, डाइट चेंजेस करेंगे, लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, तभी रिवर्सल आपका पॉसिबल हो पाता है। छोड़ दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स आराम से। जब हम प्राणायाम करते हैं तब भी 1 मिनट पे लगभग 4-6 कैलोरीज का बर्न मिलता है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो बीच बीच में आपने थोड़ा सा गैप दे देना है, जैसे 50 या 60 हमने स्ट्रोक्स किया उसके बाद थोड़ा सा गैप दे दीजिए, फिर आपने उसका अभ्यास करना है। अगर प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की तो रेगुलर आप कोई भी प्राणायाम है उसको अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम है, डायग्नोज हुआ है, तो वो स्लो आपने उसकी शुरुआत करनी है, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना है। चलिए भी आंखें बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। और अपने माइंड को एकाग्र कीजिए आपके दोनों आईब्रोज के बीच में। और महसूस करें कि जो भी आपने अभी योगिक व्यायाम किया है उससे हमारे सारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से फैल गया है, हमारे सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से हेल्दी हैं, महसूस करें कि आप पूरी तरह से फिट हैं और प्रसन्न हैं, खुश हैं। दोनों हाथों को हल्का सा रब करें, आंखों पे स्पर्श दें। सेशन यही पूरा करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेशन राजयोग का शुरू होने वाला है, तो प्लीज आप लोग बैठे रहेंगे। चलिए जब तक भेजे आ रहे हैं तो कुछ पूछना है अपने फिटनेस के लिए तो 2-3 मिनट बातचीत कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें डाइट से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, जी जी ब्लॉक नहीं है, हाँ 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 तरुणी अच्छे हैं, वो हार्ट के हैं स्पेशली। जी नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे सेल्स और टिश्यूज का एक सिस्टम है कि उनका रेजुविनेशन भी शुरू होता है और धीरे धीरे उनकी जो पावर है वो भी सिकुड़ना शुरू होती है। स्किन के ऊपर जैसे एज बढ़ती है तो आप वो झुर्रियां और झाइयां देख पाते हैं, फेस के अंदर देख पाते हैं, उसी तरह से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी थोड़ा सा उसकी उनकी फिटनेस कम होती है। रेगुलर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन वहां अच्छे से पहुंचता है तो वो ज्यादा आपके फ्लेक्सिबल रह पाते हैं और यंग रह पाते हैं, जो अंदर से हमारी नसें हैं उनकी लाइफ थोड़ा सा अच्छी रह पाती है और फिटनेस आपकी अच्छी रह पाती है। नॉर्मल वे में आप थोड़ा सा ऊपर से स्टीम ले सकते हैं, नेचर की ओर में मिट्टी की पट्टी 15-20 मिनट लगा सकते हैं और ठंडी और गर्म पट्टी भी चेस्ट के ऊपर आप बांध सकते हैं, जिसमें गीला कपड़ा सूती चेस्ट के ऊपर बांधा उसके ऊपर गर्म कपड़ा कोई भी लपेट दिया 20 मिनट के लिए, गर्म कपड़ा कोई भी आपका ऊनी कपड़ा घर में कोई हो यूज कर सकते हैं, मफलर है या कुछ शॉल में से बना के उसको उसके ऊपर लपेट सकते हैं। लेकिन रेगुलर प्राणायाम और एक्सरसाइज करें ताकि जितना ब्लड का सर्कुलेशन हमारा वहां तक जाएगा उतना उन चीजों को हेल्दी रखेगा और वो एक्टिवेशन उनका बढ़ता जाएगा। किस चीज का देखिए कंप्लीट कहना, अगर आप साइंटिफिक वे पे हैं तो उसकी एक तो हमें स्टेज पता होनी चाहिए कि क्या है, हमारी ब्लॉकेज कितनी है, किस स्टेज पे वो चीज है। हम सिर्फ योगा और नेचुरोपैथी के ऊपर उतना डिपेंड करें लेकिन साथ साथ अगर जहां हमें मेडिकल हेल्प कर रही है, एलोपैथी हेल्प कर रही है, चाहे आयुर्वेद हेल्प कर रहा है, चाहे होम्योपैथी हेल्प कर रही है, उन सब का भी सहारा लेना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड ना रहे। जैसे जैसे चीज कंट्रोल में आना शुरू होती समझिए कि स्टेज बहुत ज्यादा नहीं है, हल्की स्टेज पे है तो रिकवरी जल्दी आती है ना, तो जैसे ही रिकवरी आना शुरू होती है फिर आप बाकी चीजें और दवाइयां अपनी बंद कर सकते हैं। लेकिन पहले देखना यह है कि साइंटिफिक वे पे आइए, डायग्नोज प्रॉपर लीजिए, स्टेज क्या है, कहां तक वो चीज हमारी बढ़ी हुई है, उसके हिसाब से हमने उसको ट्रीटमेंट करना है। लेकिन यकीनन आपको योगा और नेचुरोपैथी अच्छे से आपको फायदा उन चीजों के लिए देती। जी हाँ नॉर्मली क्या होता है, बाईपास के बाद भी जो हमने बाईपास किया है, जो नसों को हमने दूसरा काट के पीस वहां डाला है, अगर आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं आया है तो धीरे धीरे वहां भी हल्का हल्का फैट जमना शुरू होता है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, ब्लॉकेज आनी शुरू होती है। लेकिन उसमें टाइम लगता है, लगभग 10 से 15 साल का एक फेज है जो उसमें बाईपास वाले में लगता है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा स्टेप्स आपने नहीं लिए हैं उसको धीरे धीरे अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको फायदा। चलिए पूरा करते हैं हमारे नेक्स्ट टीचर आगे। ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद।